और साथ ही अब देखिए, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मेरी शुक्रगुजारी करते रहना, मेरी ना शुक्री ना करना। आसमान वाली जात ने खाकी बंदे को अपने बराबर खड़ा कर दिया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें करता हूं। सूरह हशर में आप पढ़ेंगे इसका ऑपोजिट भी है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्ला, उन लोगों जैसे ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए। दिल में आता है आगे जवाब होगा, अल्लाह उनको भूल गया नहीं, फंसाहु अनफुसहुम, जो अल्लाह को भूलता है अल्लाह उसको उसकी जान भी भुला देता है। तो यहां फज़कुरूनी अज़कुरकुम छोटी सी आयत है, 152 आयत, दो तीन लफ्जों की आयत है, लेकिन समंदर है इसके अंदर। हम लफ्ज जिक्र पढ़ते ही एक खास तरीके का जिक्र, शम्मे गुल कर दो, पानी रख लो, तस्बीह हाथ में रख लो, लाइटें बंद करो, खुद को सोचो मछली के पेट में तैर रहे हो और पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु, 100 दफा लाख दफा सवा लाख पढ़ो। आज हमने जिक्र को विर्द में बदल दिया, कितनी दफा पढ़ूं जी बाजी, मुझे बताएं कितनी दफा पढ़ूं। हमारे पास लोग आते हैं वजीफा बताएं, बे वजीफा ये कि कुरान पढ़े, बच्चे की हिदायत के लिए क्या पढ़ूं, दुआ मांगे रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना, नहीं कितनी बार पढ़ूं, कब पढ़ूं, कैसे बैठूं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, यहां लिखिएगा जिक्र से मुराद ये पिछले चार काम है। नबी ने जो अल्लाह का जिक्र करने का तरीका बता दिया, युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा और युज़क्कीकुम और सारी चीजें, ये है असल जिक्र। देखिए आप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको याद आ रहा होता है, आप देखिए कि अब आप कुरान पढ़ रहे हैं, तर्जमा याद कर रहे हैं, तजवीद की क्लास में, तफसीर की अब क्लास हो रही है, आगे आगे आपके इंशाल्लाह सब्जेक्ट्स शुरू होते जाएंगे, क्या अल्लाह याद आता है यहाँ बैठ के, तो फज़कुरूनी और क्या होगा। कुरान पढ़ते हुए, हदीस पढ़ते हुए, दीन के अहकामात पढ़ते हुए जितना अल्लाह याद आता है वो अल्लाह हू करने में तो कोई नहीं आता। बात समझ है, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि एक शख्स को देखा तो कर अल्लाह अल्लाह ऐसे 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 जो कुछ करते हैं। तो लोगों ने पूछा इसको क्या हुआ है, कहा ये बड़ा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, इसको होश नहीं बेचारे को, कहते हैं इसको पकड़ो ऊपर छत पे सबसे ऊंची इमारत की दीवार पे बिठाओ, फिर इसको को अल्लाह करे, और फिर भी अगर ये ऐसे ही करे तो हम मानेंगे कि इसको होश कोई नहीं, वहां जाके तो ये नहीं करेगा, उसको पता मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो जिसको होश नहीं होता वो तो बेचारा फिर छत से भी गिर जाएगा, ये पखंडबाजी है, ये खेल है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, इस पे तो दर्स बड़े हैं, आप सिर्फ इस एक आयत पे डिटेल लेना चाहते हैं तो मैं इस वक्त नहीं दे सकती आपको, इसका हक नहीं अदा कर सकती, इतनी खूबसूरत आयत है। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें करूंगा, एक बुजुर्ग ने कहा मुझे पता चल जाता है अल्लाह मुझे कब याद करता है, कहा कमाल है तुम्हें कैसे पता चल जाता है, कहा जब मैं अल्लाह को याद करता हूँ अल्लाह मुझे कह रहा होता है। सही रिवायत में आता है कि जब बंदा एक महफिल में लोगों के बीच में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ऊपर आसमानों पे काला महफिल में बंदे का जिक्र करता है और वो फरिश्तों की महफिल होती है। इस वक्त आपको यकीन है कि आपका जिक्र आसमानों पे हो रहा है, आप अपने नाम लेके गए आसमानों पे, इस वक्त आपके तस्करे हैं, फलां क्लास में बैठी हैं, फलां थक गई हैं, फलां को भूख लगी है, फलां बड़ी शौक से सुन रही हैं, फलां का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, फलां का टेस्ट बड़ा अच्छा हो गया, आपके तस्करे हैं वहां आसमानों पे। दुनिया आपको ना जाने, क्या करना है दुनिया को, बहुत सारे लोग दुनिया में गुमनाम है, वहां उनके तस्करे, और इसका ऑपोजिट भी है। तो जरूरत है कि रब को याद करें, और देखिए जिक्र को शुक्र के साथ जोड़ दिया, असल ग्रेटिट्यूड यहां से पैदा होता है, तशक्कुर के जज्बात किसी की याद पिलाते हैं। आप किसी के एहसानमंद होते हैं ना, आप कहते हैं उस बंदे का मेरे पे बड़ा एहसान है, उसने मुझे गुमराही की दलदल से निकालकर हिदायत पे रखा, आप कभी उसको नहीं भूलेंगे। आप खुद भी अपने ऊपर याद करें, कौन आपकी दोस्त थी, कोई हमसाई होगी जो पहली दफा आपको उठाकर कुरान की क्लास में ले आया, मेरा नहीं ख्याल कि आप कभी उसका हक अदा कर सके। और वो उस्ताद जिसने पहली दफा दिल में जोत जगाई दीन की, इल्म की और गुनाहों की नफरत सिखाई, उसको मैं तो नहीं आज तक भूली, और अल्लाह ना करे मैं कभी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक अपने उस्तादों को भूलूं। ये कैसे जज्बे होते इंसान के जैसे पानी पिया और कुएं से पानी लिया और चल पड़े, कभी बंदा उस कुएं को नहीं भूल सकता जहां से हिदायत का पानी पिया हो। वश्कुरूली, ये तशक्कुर के जज्बे होते हैं, ये शुक्र माँ बाप के लिए भी होता है, ये उस्तादों के लिए भी होता है और ये अल्लाह के लिए भी होता है। भला तकफुरूनी, न कदरी ना करो, यहाँ कुफर से मुराद डिनायर नहीं है, न शुक्रिया, तुम न शुक्रे बनते हो। मैंने तुम्हें क्या नेमतें दी, तुम्हें कहाँ बिठा दिया, तुम थे क्या, तुम्हें बना क्या दिया। जरा हम अपने आप को चुटकी तो काटें, हम कहाँ बैठे थे, हम इस वक्त हो सकता किसी सेल्स लाइन में भाग रहे होते, हम इस वक्त किसी काउच में बैठे चाय का कप लेके कोई फैशन मैगजीन देख रहे होते। अल्लाह मुझे आपको उठाकर कहाँ ला के बिठा देता है, कभी हमने इस नेमत को सोचा? और अगर ये नेमत याद रहे तो फिर कभी इंसान का सर अल्लाह के आगे से उठता नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला आपको मुझे दिखा रहा है, मुझे याद करो, अल्लाह की याद दिल की दवा है, दिल को ऑक्सीजन के साथ साथ अल्लाह की याद चाहिए होती है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, चार वादे हैं अल्लाह के कुरान में, ये आज पहला पढ़ा है, लिख लें इसको, तीन आगे लिखाऊंगी जहां आएंगे। मोमिनों से अल्लाह ने चार वादे किए, उनमें से एक वादा तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। वल्लाह ही अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह का नाम बुलंद करना शुरू हो जाएं, अल्लाह आपका नाम बुलंद कर देगा। आप अल्लाह के नाम की इज्जत करनी शुरू कर दें, अल्लाह आपको इज्जत दे देगा। आप अल्लाह की मोहब्बत लोगों को देनी शुरू कर दें, वल्लाह ही लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। ये एक नकद इनाम होता है दुनिया में। आप लोगों को रब से जोड़ें, लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। आप नहीं कहते मुझे पीर बनाओ, मुझे मुरीद बनाओ, मेरे आगे बैठो, मेरी खिदमतें करो, खुद बहुत दिलों में अल्लाह प्यार डालेगा। जो अल्लाह का बनता है अल्लाह उसका बन जाता है। इसलिए आपके मेरे लिए इस वक्त जरूरत है। अब जब जिक्र करता है बंदा अल्लाह का तो उसे फायदे क्या होते हैं, नोट करिएगा जरा, पांच छह फायदे लिखाती हूं आपको, जिक्र के फायदे क्या होते हैं। सबसे पहली बात, दिल को सुकून, अला बि जिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इसी कुरान में आप पढ़ेंगे। दूसरा फायदा, अल्लाह आपको याद करेगा, बुखारी की रिवायत है 6805, वही जो मैंने हवाला दिया कि जो दिल में याद करता है अल्लाह उसको दिल में करता है, जो महफिल में करता है उसको अल्लाह महफिल में करता है। तीसरा फायदा जिक्र क्या होता है कि फिर जिंदगी अल्लाह की रजा के मुताबिक चलने लगती है। और चौथा फायदा, जिक्र करने वाला अल्लाह की नाराजगी से बचने की कोशिश करता है और जिक्र करने वाले की सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ चलती है। जहरी बात है, जिसका तज़किरा होता है ध्यान उधर ही होता है। और एक बहुत बड़ा फायदा, जिक्र इलाही करने वाला दुनिया की मोहब्बत से निकल आता है, जैसे मछली पानी से निकल आती है ना तो अलग हो जाती है, तो नेमतों का इतराफ फायदा है। सवाल पैदा होता है, वश्कुरूली, शुक्र क्यों करूं भाई, क्या फायदे हैं शुक्र के? नंबर एक, शुक्र से नेमत बढ़ेगी, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, आपकी जिंदगी में खैर आएगी, बरकत आएगी, आपके वक्त में बरकत आएगी। लोग घंटे में जो काम करते हैं आप 15 मिनट में करेंगे इंशाल्लाह। फिर शुक्र से अल्लाह की रजा मिलेगी और शुक्र से हिदायत और इस्तकामत मिलती है। ला तकफुरून, नशुक्री से क्या नुकसान है भाई, वो भी लिख लें। नशुक्रा बंदा एहसान फरामोश बन जाता है, तकब्बुर आने लगता है, इंसान जालिम बन जाता है और अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बनता है। सवाल पैदा होता है, अल्लाह की नेमत के शुक्र का हक कैसे अदा करें, शुक्र कैसे करें? तो जो नेमतें मिली हैं दिल में खुश रहें अल्लाह से, इसको कहते हैं शुक्र बिल कल्ब। फिर जुबान से इतराफ करें, गुनगाएं, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा दिन आपकी जुबान न थके अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए। और तीसरा दर्जा यह है कि उस नेमत को अल्लाह के रास्ते में लगा दें, उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। आंखों से वो देखें जो रब चाहता है देखो, और कानों से वो सुने जो रब चाहता है कि सुनो। और उसके बाद या अय्युल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सला इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यहां से आप देखेंगे अब उम्मत का एक नया दौर शुरू हो रहा है। मैं आयते पढ़ के इकट्ठी एक ही मजमून है फिर इनको आपके सामने रखूंगी कि शुक्र के फौरन बाद सब्र की बात कैसे आ गई। असल में यही जिंदगी है, थू पर छाओ, आधा दिन सब्र है और आधा दिन शुक्र है। या अय्युल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिएगा इस आयत का। ये आयत मदीना में नाजिल हुई और वहाँ उस वक़्त औस और खजरज के कबीले थे और यहूद के तीन थे। नबी सल्लम हिजरत करके मदीना में आ चुके थे। अब ये जो लोकल लोग थे ना, ये मुसलमानों के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, मुश्किलात खड़ी कर रहे थे, यही से निफाक जन्म दिया। यहूद के दिल में हसद था, होते होते नबी सल्लम के रास्ते में इतनी मुश्किलात खड़ी की गई कि बदर से लेकर तबूक तक कोई साल ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी को जंग ना लड़नी पड़ी हो। उम्मते मुस्लिमा जो नए नए मुसलमान मदीना में अभी जमे भी नहीं, उनको पहले ही दिन खबर दी अभी कोई जंग नहीं हुई। याद रखिए सूरत तौबा, सूरत बकरा मदनी दौर के शुरू की सूरत है, बस गज़वे बदर के दौर के करीब की सूरत कह लें। बट इसी में सारी खबरें, अब ये जो अगली आयतें पढ़ेंगे ना, सारी जंगों की खबरें, आपकी बीवियों पे लगे हुए इल्ज़ामात की खबरें मुसलमानों को बताया जा रहा है। पहले देखिए ईमान की बात बड़ी होती है। ये कभी नहीं आया कि ऐ लोगों जो नमाजें पढ़ते हो, ऐ लोगों जो रोज़े रखते हो, सिफत ईमान अल्लाह को बड़ी प्यारी लगती है बंदे की। उसी से कही इस्ताइनु, इस्ताइनु क्या है, याद कीजिए या का नस्ताइन, ऑन एन एनत तावन, वो मदद जब बंदा खुद अपनी कोशिश करके थक चुका हो, हाँ आप गए टायर नहीं लग रहा मुझसे अपना, अब आप मेरी मदद कर दें। ये नसर नहीं है, ये एनत है। मुसलमानों को यहाँ से बता दिया कि अब आगे हालात बड़े तंग होने वाले हैं, तो खतरों और मुश्किलात से निकलने के दो रास्ते, एक सब्र और एक नमाज। नमाज पे तो बहुत दफ़ा बात हुई, आगे भी होगी इंशाल्लाह। सब्र क्या है? सब्र कहते हैं बांधने को, स्टॉप, पत्थर रखना, दिल पे सब्र का फाहा रखो, जम जाओ, डोंट बी रिएक्शनरी। जिन हालात में ये आयतें नाजिल हो रही हैं, तो यहाँ तो कहा जा रहा है कि तुम अपने दीन पे जम जाओ, नफ्स को पसंदीदा चीज़ें जो हैं उनसे रुकने को सब्र कहते हैं, यानी मरगूबात नफ्स से रुकने का नाम सब्र है, ख्वाहिशात नफ्स से बचने का नाम सब्र है, नफ्स को अल्लाह की इताअत पर लगाने का नाम सब्र है, अल्लाह के मना किए हुए कामों से रुकने का नाम सब्र है, मुसीबतों को बर्दाश्त करने का नाम सब्र है, जजा फजा से रुकने का नाम सब्र है। सब्र की तीन बड़ी बड़ी किस्में हैं, इंशाल्लाह आगे जहां आएगा बहुत दफा बताऊंगे। और आपको मजे की बात याद है, पिछले पारे में भी ये आयत आई थी, वहां किन के लिए थी, बनी इसराइल, कब आई थी, मनोसलवा के इनकार पे, यहां किसको कही जा रही है, उम्मत मुस्लिमा से। उन्होंने भी लन नस्फिर अला तामिन वाहिद कहा, तो फिर सब्र की बातें आई, या उम्मत मुस्लिमा को बता दिया कि सब्र करो। सब्र की पहली किस्म क्या होती है, अल्लाह की फरमा बरदारी पे अपने नफ्स को पाबंद करना। नमाज पढ़ना आसान है, रोजा रखना आसान है, सब्र करना पड़ता है। इतात, यानी जो कहे करो उसको करने से अपने आप को करने पे तैयार करना, उम्मीदों को छोटा करना। दूसरा था सब्र अनिल मासियत, गुनाह के कामों से रुकने पे सब्र। दिल चाह रहा है गीबत करने को, नहीं करनी। दिल चाह रहा है गलत चीज देखने को, नहीं देखनी। तीसरा फिर सब्र है सब्र अलल मसाइब, मुसीबतों पे सब्र। इसमें बीमारियां, दुख, परेशानियां, जिसका जिक्र आगे भी आने लगा है, और नेकियों के रास्ते में सब्र। रोजा भी सब्र की एक किस्म है। सब्र असल में दर्जे रखता है। मुख्तलिफ तरह के साबिर लोग होते हैं। एक दर्जे का सब्र क्या होता है कि तकलीफ आई, शोर मचा दिया, हाय मैं मर गया, हाय मेरे ही नसीब में था, शिकवे लिख लीजिए, शिकवा शुक्र को ख़त्म कर देगा। जो बीवी शिकवे करती रहती है ना, वो शाकिर कोई नहीं है, और इसी तरह अपोजिट भी है। दूसरा दर्जा क्या होता है कि तकलीफ आई तो सब्र कर लें, रजा ठीक है, अल्लाह की रजा थी, बर्दाश्त किया, क्या हो सकता है, मुतमईन रहे। तीसरा दर्जा सब्र का क्या है, बड़ा अजीब है ये, तकलीफ आने पे अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र करें कि अल्लाह तूने तकलीफ दी है, तेरा शुक्र है। और इससे भी ऊपर एक सब्र होता है, तकलीफ की ख्वाहिश करे कि आए तकलीफ और मैं सब्र करूं और अल्लाह की रजा पे राजी रहूं। अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा लगता है کہ اللہ اس کی من پسند چیز لے لے اور وہ کہ اللہ تیرا شکر ہے میری جان چھڑائی سے، مجھے تو تیری محبت چاہیے. تو صبر کے ساتھ بات کر کے یہاں شہادت حق کی بات ہے. پیچھے کام دیا تھا نا آپ کو مجھے کذالک جعلناکم امتاً وسطا، تو یہاں دین کو پھیلانے کا صبر. اصل سب سے بڑی مشکل بھی یہی ہے، اپنا من پرانا پاپی نمازی نہیں بنتا، دوسروں کو کیا بنائے. تو یہاں صبر بہت مختلف معنوں میں، میں اکثر کہتی ہوں صبر گرگٹ ہے، کیموفلیج، رنگ بدلتا ہے. پورا دین صبر ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو، رشتہ داروں کی غلط باتوں کے جواب میں نیکی کر سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو، روزہ رکھ سکتے ہیں صبر کے بغیر، حج کر سکتے ہیں، قناعت کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے دین کا ہر ریچول صبر پہ ہے. صبر بہت ضروری ہے، اس کے بعد دین کا کام ہوتا ہے. آپ اس وقت سب تفسیر نہیں سن سکتے اگر صبر نہ کریں، میں بول نہیں سک رہی اگر صبر نہ کروں. تو صبر زندگی کا خلاصہ ہے. جب حالات مشکل ہوں، اللہ کے راستے میں کام مشکل لگے، لوگ آپ کی نہیں مان رہے، آپ کے گھر کے حالات نہیں ٹھیک، رشتہ دار ناراض ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کے نبی کی یہ مستقل سنت تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. پیچھے بات تھی امت وسط کی، یہاں شہادت کی بات ہے. پہلی دفعہ آپ کے سامنے شہادت کی بات ہو رہی ہے. ادھر شہید کون ہوتا ہے؟ جملہ لکھیے گا، جم ہے، ساری زندگی شہادت حق کا کام کرتا رہا. پہلے تبلیغ کی، ابلاغ کیا، بندوں کو رب سے جوڑا، قرآن کی تعلیم عام کی، معاشرے سے غلطیوں کو، گندگیوں کو مٹانے کی کوشش کی. یہ سارے کام کرتے کرتے اخیر جان دینی پڑی تو جان بھی دے دی. فلم میں دیکھتے دیکھتے مرنے والے شہید نہیں ہوتے، نافرمانیاں کرتے کرتے مرنے والے شہید نہیں ہوتے. شہید کے پیچھے ایک بری ہسٹری ہوتی ہے، ساری زندگی ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام لے لے. بول کے لینا ہے تو بول کے لے لے، لکھا کے لینا ہے لکھا کے لے لے، چلا کے لینا ہے اللہ کے رستوں میں لے لے، آخری کہہ کے جان دینی پڑے تو جان بھی دے دو. اور شہید کو یہاں اللہ زندہ کہہ رہا ہے. کیا مطلب؟ شہید زندہ ہوتے ہیں؟ کس طرح زندہ ہے؟ لا تقولو، تم نہ کہو ان کو. یہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ شہید ہیں ہی زندہ. نہیں، ہیں زندہ کیسے؟ اللہ کے ہاں، برزخ میں. دنیا میں شہید کی بیوی بیوہ ہوتی ہے، اس کی وراثت بٹتی ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں. شہید کی بیوی 4 ماہ 10 دن کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے، لوگ اس کو مردہ سمجھتے ہیں. وہاں اس کا کیا معاملہ ہے؟ میں 2-3 جملے بولتی ہوں، لکھیے گا. شہید میں سکرات الموت نہیں ہوتی، نزا کی سختیاں نہیں ہوتی. حدیث میں تھے چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے شہید کو، چٹکی کا کاٹنے، چیونٹی کاٹے نا کتنی کو تکلیف ہوگی پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی روح نکل جاتی ہے جسم سے. پھر شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. اور تیسری بات ہے کہ شہید پہ برزخ نہیں آتی، قبر کے اندر دور نہیں ہوتا، یہاں مرے جنت میں پہنچ گئے، یعنی ڈائریکٹ فلائٹ ٹو جنہ. عام مومنین بھی جو مرتے ہیں نا، تو وہ مرنے کے بعد قیامت تک کا عرصہ عالم برزخ میں گزارتے ہیں، جو قبر کی صورت میں ہے، اندر کے حالات اللہ جانتا ہے، علیین یا سجین میں ہے. شہید کو اللہ فزیکلی یہاں سے اٹھا کر نا تو جنت میں ڈال آتے ہیں. آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں، پہلا طریقہ یہ کہ اوسلو سے نکلے استنبول، استنبول سے لندن، لندن سے دبئی، دبئی سے کراچی، کراچی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور، ادموے ہو گئے. پھر وہاں سے گاڑی میں بیٹھے تو آپ پہنچے گجرات. حال کیا ہوا؟ کتنے چکر پڑے. اور دوسری صورت ہے ادھر بیٹھے 4 بجے، ادھر نکل گئے صبح 6 بجے، 7 گھنٹے کی فلائٹ. شہید کی ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے. اور کبھی جس کو قبر سے ڈر لگے نا، اور جس کو برزخ سے ڈر لگتا ہے نا، وہ دعا یہ کرے اللہ مجھے شہادت دے دے. شہید قبر میں کوئی نہیں ہوتے. اب ان کی زندگی کیسی ہے، کیا ہے؟ आपको मुझे नहीं पता, खुद ही अल्लाह ने कह दिया तुम्हें शऊर ही नहीं है। अब शोहदा की जिंदगी का हमें नहीं पता कब्र वाली, तो नबियों की जिंदगी का हमें क्या पता है? इस कायद पे बहुत लोगों ने झोल डाले, कहते देखो लुक, जब शहीद जिंदा है तो फिर नबी भी जिंदा है। तो नबी जिंदा है अगर, तो अल्लाह को क्या इतराज था कहने में कि शहीदों और नबियों को मुर्दाना को, नबी का नाम आ सकता था इधर के? नहीं, बहुत आराम से आ सकता था। तो ये सब झूठ है। नबियों की जिंदगी बरजख में कैसी है? अल्लाह ने उनको एक आला मुकाम दिया हुआ है, आप मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में कैसे हैं? ला तशरून, तुम नहीं जानते। अच्छा, हम आपकी कब्र पे जाके कह सकते हो नबी मैं आ गई, मुझे पता आप अंदर जिंदा हैं, मुझे पता आपकी बीवियां आपके पास हैं, आप खाने खाते हैं। ला तशरून, चुप कर जाओ, बोला ना करो ज्यादा, जितना बताया उतनी बात पे रहो, बंद दरवाजे में से तो झांकने का वैसे ही हुक्म नहीं है। तो लिहाजा यहां अब शोहदा की बात करके वला नबलु वन नकुम बिशय मिन अल खौफ वल जूई व नक्स मिन अल अमवाल वल अनफुस वल अनफुसी व समरात, गिनेंगे ना तो पांच चीजें हैं बेशक, और वला नबलु वन नाकुम, वाओ कसम की है ये, लिखिए इसको, कसम है वाओ की, लाम ताकीद, लामे ताकीद, नबलू वन ना, नून जो है ना ऊपर, नून जो के शिद्दत की होती है, हम जरूर तुमको आजमाएंगे, बिशयिन, हाँ थोड़ा सा, ये नहीं कि सारी जिंदगी मुसीबतों में रहोगे। याद रखिए जब हक के रास्ते पे चलेंगे, जैसे आप में से बहुत सारों ने भी नया नया सफर शुरू किया है कुरान का, आपकी जिंदगियों का एक यू टर्न चलेगा, हर बात में आप सोचेंगे अच्छा ये भी गलत, ये भी ठीक नहीं, ओहो बस यहां से आपके आजमाइशें शुरू हो जाएंगी। मगर भी शयन, शुरू शुरू में बड़ी मुश्किलें आती हैं, थोड़े दिन के बाद हाथ सेट हो जाता है। आप देखिए, आप गाड़ी भी चलानी सीखते हैं, शुरू में कई गलतियां करते हैं, चूल्हा जलाएंगे कई दफा हाथ जलाएंगे, शुरू में दीन के रस्तों में बहुत मुश्किलें आती हैं, बस वहां जम जाए, फिर आप एक्सपर्ट 100 की स्पीड पे इंशाल्लाह भागेंगे नेकियों के सफर में, फस्तबिकुल खैरात। लेकिन शुरू में ये होगा, खौफ आएगा, भूख लगेगी, नक्स मिन अल अमवाल, माल कम होंगे, अनफुस जाने जाएंगी, समरात फल जाएंगे। ये सारा कुछ हुआ साहबा के साथ बाद में। अगर आप देखें तो इस एक आयत में 155 और उससे अगली भी साथी बेशक मिला लें, बदर से लेकर तबूक तक की सारी जंगों की खबर साहबा को दे दी है। बदर क्या था? बदर को अगर आप अपने जहन में लेकर आए ना, अचानक जंग थी, अनएक्सपेक्टेड थी, नक्से में नल अमवाल हो रहा था, मुसलमानों का ही माल था। ओहद में देखिए, अनफुस की जंग हो गई, 70 मारे गए मुसलमानों के। गजवे अहजाब को देख लीजिए, खौफ की जंग थी, सूरत अहजाब में आप पढ़ेंगे, जुलजिलु जिलजाल अनशदीदा। और तबूक में देखिए, खड़ी फसलें तैयार है, समरात, समरात उनकी जमा, औलाद भी और फल भी हैं, खड़ी फसलें छोड़नी पड़ी। क्या पता चला कि अल्लाह के रास्तों में कभी बदर आएगी, कभी तबूक आएगी, कभी खंदक आएगी, कभी हुनैन आएगी। ओ मुसलमानों, ओ ईमान वालों, तुम तैयार रहना कुर्बानियों के लिए। आप कहते जाना तो जन्नत में, बट कुर्बानी नहीं देनी, सॉरी। आप किसी ऐसे शख्स को क्या कहेंगी जो कहता है मैंने PhD तो करनी है बट मैंने इम्तिहान कोई नहीं देना? हो जाएगा PhD होल्डर। डॉक्टर बनने का शौक है बट इम्तिहान नहीं दूंगा, बताएं आप मुझे। आप कहते हैं मुझे लॉयर बनना है पर शर्त है कि मेरा इम्तिहान ना लेना। तो जन्नत चाहते हो तो हिसाब के बगैर, इम्तिहान के बगैर, दर्जे तो इम्तिहान के बाद ही मिलते हैं। इसलिए कहा हाउ इज इट पॉसिबल, जन्नत के रास्ते में बहुत से इम्तिहान आएंगे, मेरे भी आएंगे, आपके भी आएंगे। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुमने गुमान किया जन्नत में जाओगे तो मुश्किल नहीं आएगी? लेकिन याद रखे ये वक्ती होते हैं, करें क्या, बशर साबरीन, सबर वालों को खुशखबरियां दे दो, खुशी से सह जाएं, पी जाएं, नफ्स पे काबू, ख्वाहिशों पे काबू, लोगों की बातों पे काबू, तनकीद के रास्ते में खुश, लोग छोड़ें खुश, लोग पकड़ें खुश। ऐसे लोग कौन है? अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, ये वो लोग है जब पहुंचती हो मुसीबत। लफ्ज़ देखिए, असाबत और मुसीबत, आपको दो मुख्तलिफ तरीके से लफ्ज़ लग रहे हैं ना, दोनों एक ही लफ्ज़ है। स्वात वाओबा, पीछे कहाँ पढ़ा है आपने? कसईब, सईब बारिश का पड़ा था ना। तो सौब कहते हैं अरबी जुबान में तीर का निशाने पे लगना। ये जो मुसीबत है ना, ये एग्जैक्टली ऐसे है जैसे अगर मैं आप पेन फेंकूँ ना इधर, आप में से किसी को निशाना बना के, हो सकता है मेरा पेन इधर उधर गिर जाए, लेकिन मुसीबत ऐसे उसी बंदे पे आती है जिस पे लगनी होती है। ये आसाब युसीबू, लोग कहते हैं किसी की आती मेरे पे आ गई, नहीं बिल्कुल आपके ऊपर ही आनी थी। और असाबत में भी वही है, और सैयब भी वो कतरों की सूरत में, बारिश के जो कतरे होते हैं ना, वही चीजें इधर आती हैं। तो फरमाया करो क्या, जब मुश्किल आएगी तो क्या करो? कालू, वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलावात मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से सलावात है, नवाजशें, मेहरबानियाँ। ये उर्दू में तो सलवातें सुनाना बुरी बात होती है ना, अरबी में सलवातें बख्शिशें, नजराने, रहमतें, खुशखबरियाँ, यानी अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है, अल्लाह उनकी दुआएं सुन रहा है, अल्लाह उनके तस्करे फरमा रहा है। वह रहमा और रहमत भी है, रहमत में मरसी है और सलावात में नजराने हैं। वलाइक हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं हिदायत पाए हुए। मुहतदी की जमा मुहतद, मोमिन को आजमाना अल्लाह की सुन्नत है। इनको मसाइबे खमसा कह लें, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें आएंगी। मोहब्बत के मुकद्दर में कहाँ आराम ए हमदम, कहीं शोला कहीं बिजली कहीं सीमाब होती है। ये कदम कदम बुलाएं, यानी अल्लाह सुबहान तआला एक एक कदम पे आपको कहता है वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। ये कदम कदम बुलाएं, ये सवादे कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। यही सिखाया, ये मुश्किलों का रास्ता है। करना कैसे वक्त में कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये है जुमला याद करने के काबिल। हैं ही अल्लाह के तो चले जाएंगे, जिसकी चीज थी उधर चली गई। जब मुश्किल आए तो अल्लाह की तरफ जाने को याद कर लें, जो कुछ है सब खुदा का, वहमो गुमा हमारा, जहां दी दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आप पढ़ेंगे सहाबा की मिसालें, सूरत अहज़ाब में जंगे खंदक का जिक्र है। सहाबा कराम ने देखा सारा अरब उनके खिलाफ उमड़ गया है, आंधी की तरह मदीना के उफक पे छा गया, बचने की कोई सूरत नहीं। तो क्या बोले? हाज़मा वादन अल्लाह व रसूलो, ये है वो चीज़ जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। वसदक अल्लाह व रसूलो, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। वो खुश होते थे, कहते थे ये आई है वो मजे की चीज। सहाबा ने स्कंदरिया का मुहाजरा किया। आपको तो स्कंदरिया का है, अलेक्जेंड्रा मिस्र का शहर है। मकोकस से मिस्र ने एक दिन मुसलमानों के वफद से गुफ्तगू की और कहा एक तरफ रूमी फौजें हमारी मदद के लिए पहुंचा ही जाती हैं, दूसरी तरफ दरियाए नील ने तुम्हारा रास्ता रोक रखा है और तुम्हारे सामने हम हैं। तुम तो तीन तरफ से घिर गए हो, सिर्फ तुम्हारे पास एक रास्ता है जिससे तुम पसपा हो सकते हो, तो मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूं। समझे? यानी डरा रहे उनको कि तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है, करोगे क्या? और कहा कि मैं तुम्हें पैसे भी देता हूं, तुम्हारे फौजियों को नकद इनाम दूंगा, मेरी पेशकश कबूल कर लो, खरीदना चाह फौजियों को, वरना चंद दिन बाद तुम्हारी लाशें दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। तो मुसलमान उसकी बातें सुनकर हंसे और कहने लगे मौत से तुम डरते हो, हम नहीं डरते, हम तो शहादत को अल्लाह का इनाम समझते हैं। और अपने कंधों पर सर रखा वजह ना इसी अमानत को अदा करने के लिए कि कब हमें शहादत मिले। मुंह की खाई उसने, वो तो खुश हो गए सुन के, अच्छा तुम हमें शहीद होने का मौका दे रहे हो। और आपको तो 1857 में जंग आजादी के जुर्म में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें एक शख्स याहिया थे, और इनको सजाए मौत सुनाई गई। डॉक्टर्स ने बताया कि जब उनको सजाए मौत की खबर मिली उनके बाद उनकी सेहत पहले से अच्छी हो गई, खुशियां मनाते थे, चेहरों पे बहार आ जाती थी, हम जा रहे हैं अपने अल्लाह को मिलने, जैसे पाकिस्तान जाने से पहले खुशियां मनाते हैं ना, हम जा रहे हैं अपनों को मिलने, इसी तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये इत्मीनान है जो एक मोमिन के मुंह पे उसके चेहरे पे मौत के वक्त होता है। मैं अपने अल्लाह को मिलने जा रही हूँ, उछलें ज़रा, खुशियाँ मनाएं, माँ को मिलना, बाप को मिलना, भाई को मिलना। एक मोमिन जिसका दिल अल्लाह से जुड़ गया वो कहता है अल्लाह को मिलूंगी, इब्राहिम को मिलूंगी, मूसा को मिलूंगी, इस्माइल को देखूंगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलूंगी, और क्या चाहिए, मैंने इस दुनिया में रह के क्या करना है। असल बात यह है। और अगली आखिरी आयत है कि सब्र की इंतहाई मिसाल एक औरत और उसका बच्चा। इन सफा वल मरवा तमिन शायर अल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सफा साफ चटियल पहाड़ का नाम है, और मरवा वो जगह जहां हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी हजरत इब्राहिम ने। दो पहाड़ है। अल्लाह कहते हैं ये मेरे शायर, मतलब शायर शईरत उनकी जमा, ऐसी चीजें जिसको देख के शऊर हासिल हो, याद आती है ना रिचुअल्स के मानों में। फमन हज्जल बैता अवैत मरा फला जुनाह अलैही, जो हज करे इस घर का या उमरा करे उस पर कोई गुनाह नहीं, कहीं ये तवफ बिही मा, कि वो इन दोनों के बीच में तवाफ करे। सही की तरफ इशारा, यहां लिखे यह तवफ से मुराद तवाफ नहीं है, सही है। वमन ततवा खैरन, और जो कोई खैर या खुशी से नेकी करे, फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह ताला उसकी कदर करने वाला। सफा मरवा का नाम आए तो बीबी हाजरा और इस्माइल का नाम जरूर आता है। सब जानते हैं कि सफा मरवा की वजह निस्बत बीबी हाजरा और बच्चा इस्माइल है। वाकई आपने सुना हुआ है कुफारे मक्का ने क्या जुल्म किया कि एक बुत सफा पे रख दिया और एक मरवा पे। इसाफ नाम का एक शख्स था, उसने नायला नाम की एक लड़की से जिना किया हरम की हद में। अल्लाह ने इबरत के लिए उनको पत्थर बना दिया। लोगों को समझ आ गया कि इस घर की हुरमत बहुत है। लोगों ने इबरत के लिए इसाफ को सफा पे और मरवा पे नायला को रख दिया कि जरा इबरत रहेगी। कुछ सदियां गुजरी तो लोगों ने उनको बुजुर्ग बना लिया कि ये बड़े पहुंचे हुए होंगे, तभी तो इनके बुत हैं। अब कुफार मुशरिकीन जो थे वो उनका तवाफ करते थे, तो जब कुरान में और हज के रिचुअल में सफा मरवा की सही का जिक्र आया तो साहबा को डाउट आया कि ये तो नॉन मुस्लिम का तरीका है। तो कहा नहीं, ये नॉन मुस्लिम तो बीच में आ गए, पीछे ये बीबी हाजरा और उनका तस्करा था। सबर की बेहतरीन मिसाल एक औरत जिसने अपना घर छोड़ा, और सबर का बेहतरीन मज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसने बीवी बच्चे को अपने से जुदा किया कि जाओ अल्लाह के घर को आबाद करो। अल्लाह आज के मर्दों को भी इसी की तौफीक दे। आज दीन सीखने पे इतना शोर मचाते हैं, वहाँ तो अल्लाह का घर बनाने के लिए इब्राहिम ने बुढ़ापे में औलाद छोड़ी, बीवी छोड़ी, जाओ तुम अल्लाह का घर आबाद करो, मेरी खैर है, मैं रोटी पानी का इंतज़ाम कर लूँगा। ये सब्र चाहिए। सारे सबक का खुलासा क्या है कि अल्लाह ताला एक ऐसी उम्मत चाहता है जो अल्लाह के रास्ते में हर कुर्बानी को एक तोहफा समझे। वो अपने बीवी बच्चों के खाने पीने रोटी चावल की फिक्र ना करे, बल्कि इसकी फिक्र करे कि दीन का कुछ बन जाए। ये तड़पने वाली उम्मत चाहिए इस वक्त मुसलमानों को। ये बेहिस मुसलमान नहीं चाहिए, ये हज उमरे करने वाले मुसलमान भी नहीं चाहिए, ये नमाजों के बोझ के साथ लदे हुए लोग जिनकी जिंदगी में मकसद नहीं, अल्लाह को वो नहीं चाहिए। अल्लाह को जमे हुए लोग चाहिए। ये सब्र चाहिए और ये जन्नत है और इसकी जरूरत है। रिवायत में आता है कि क्यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा, सब्र करने वाले किधर हैं? उठे और बगैर हिसाब के जन्नत में चल पड़े। कुछ लोग उठ खड़े होंगे और जन्नत की तरफ बढ़ेंगे तो फरिश्ते इनको रोकेंगे, कहेंगे तुम किधर चले? वो कहेंगे जन्नत में। तो वो कहेंगे अभी तो तुम्हारा हिसाब भी नहीं हुआ, तुम कहाँ चल पड़े हो? तो वो कहेंगे अच्छा हमारा हिसाब होगा। फरिश्ते कहते आप कौन लोग हो? वो कहते हम साबिर थे। कहा तुम्हारा सब्र क्या था? कहा हम अल्लाह की फरमा बरदारी करते थे और अल्लाह की नाफरमानियों से बचते थे और मरते दम तक हमने सब्र किया और उस पर जमे रहे। तो फरिश्ते कहेंगे अच्छा फिर ठीक है, तुम्हारा हिसाब नहीं होना, तुम्हारा यही बदला है कि तुम जन्नत में जाओ, और अच्छे काम करने वालों का यही बदला है। अल्लाह मुझे आपको ऐसा साबिर बना दे। मोमिन की जिंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत ताल्लुक बिल्लाह लिल्लाही अतला। ये कैसे पता चले कि तकलीफें आ रही हैं तो ये आजमाइश है या गुनाह की पकड़ है? देख लीजिए उस तकलीफ के बाद आपका रवैया क्या है। लिल्लाहियत, अल्लाह से प्यार है, कुर्ब बढ़ रहा है, नमाजें अच्छी हो रही हैं, तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी। और अगर आप नेकी करती हुई भी छोड़ गए تو پھر یہ اللہ کی پکڑ تھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پکڑ سے بچائے. بہت کچھ ہے عنایتوں میں, یقین کریں کہ بس خلاصہ ہوتا ہے میرے دل کے مطابق, لیکن آپ کے لیے اتنا بھی بہت ہے. ڈیٹیل سنیے آپ پچھلے سالوں کی تفسیر میں, یہ ساری آیتیں ویکینڈ پہ سن لیا کریں, لنڈن کورس میں سن لیں, ان کیو 13 میں, سبیل الجنہ میں سن لیں, اور اگر ہمت ہے تو رب کا پیغام میرے نام میں سے سن لیں. 4 گھنٹے کی تفسیر کرواتی تھی میں ایک لیسن کی. تب آج کل تو ہم شارٹ پہ آ گئے نا کہ چلیے کوئی بات نہیں, اب لوگوں کے پاس وقت کم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے کہ عمل کریں, روس کی تفسیر میں اپنی فیلنگ دیں. یقین کریں اتنے اتنے میں پائل اپ اٹھاتی تھی دوسری کلاسوں میں, جو لوگ اپنے فیلنگز لکھ کے جاتے تھے, پھر بعد میں میں پڑھتی تھی اور اگلے دن اس کو شیئر کرتی تھی. آپ لوگ بھی لکھا کریں. تزکیے سے مراد پیوریفیکیشن, سوچیں پاک ہوں, آنکھیں گندی چیزیں نہ دیکھیں, کان گندی چیزیں نہ سنیں, دل میں گندے خیالات نہ, پیوریفیکیشن کے معنوں میں. نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام غالب ہوا, اسلام 1000 سال تک دنیا میں رہا, آج ہم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہے ہیں اور اسلام نے پھر غالب ہونا ہے. بالکل زندہ ہے ابھی تو. کلمت اللہ العلیا ابھی تو آج ہی پہلی دفعہ ٹاپک آیا. یہ آیتیں سورہ آل عمران میں بھی آئیں گی. میں نے آج تھوڑی سکپ کی ہیں کیونکہ وقت کی گنجائش ہی نہیں تھی. اور یہ شہداء کا ٹاپک سورہ آل عمران میں بہت ڈیٹیل سے آئے گا, غزوہ احد میں, وہاں آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.